परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। काम सब आत्माएं बाबा के बच्चे बनकर बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं तो बाबा हम सबको आधार मुहूर्त का टाइटल देते हैं। तो इसी सिलसिला में आज हम सब रूहानी क्रांति के सूत्र के अंतर्गत 30वां दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आत्माओं ने अपने अपने चिंतन के माध्यम द्वारा मुरली को सब ने अपनी अपनी पेशी दी है, उसके आधार से हम सब कुछ न कुछ नई बातों का जीवन में हमने प्रवेशता दी है। और जितना समय हम मुरली की स्टडी करते हैं, मुरली के अंग संग रहते हैं, उसका संगत करते हैं, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक कुछ न कुछ परिवर्तन आता ही है। तो ये आज जो मुरली है, जो रूहानी चुम्बक, और ये 12 तारीख जनवरी 82 की मुरली है, तो इसमें हम सब रूहानी चुम्बक है। बाबा ने बोला कि तुम ऐसी चुम्बक हो कि संसार में अनेक आत्माएं आगे जाकर के शक्तिहीन हो जाएगी, अपने पाँव से चल नहीं पाएंगे, ऐसी अवस्था में तुम रूहानी चुम्बक बन करके सभी आत्माओं को आकर्षित करोगे, सभी आत्माएं खींच चले आएंगे। तो अगर देखा जाता है दुनिया में भी जो चुंबक होता है वो लोहे को आकर्षण करता है, आकर्षित करता है, अपने तरफ खींचता है। तो लोहे किस प्रकार का है, जैसे कि जंग चढ़ा हुआ स्वभाव कहते हैं सुई होता है तो उसको कम खींचता है, और जो क्लीन क्लियर होता है उसमें जल्दी चिपक जाता है दूर से ही। तो इस रीति से हमारे जीवन में भी हमने अपने को कितना स्वच्छ बनाए हैं, कितना पवित्र बनाए हैं, इसी रीति से दूसरी आत्माएं भी हमारी रूहानी पर्सनैलिटी को देखकर स्वतः आकर्षित होंगे। और हमारी तरफ आकर्षित होना अर्थात पाप की तरफ आकर्षित होना, क्योंकि हमने बाबा के गुण और शक्तियों को, बाबा के हर प्रकार की बातों को अपने जीवन में फॉलो किया है, इसीलिए हमसे बाबा दिखाई दे, बाबा यही चाहते हैं। इसीलिए दुनिया में उस चुम्बक का तो हर जगह यूज करना पड़ता है, टीवी में, रेडियो में, हर जगह, मोबाइल में भी होगा उसका, कुछ न कुछ माइक में भी होता है, तो सब चीज़ में उसको शक्ति को खींचने के लिए तो इसमें चुम्बक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आवाज़ को खींचने से लेकर के हर प्रकार की चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम सब आत्माएं भी संसार में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की जो मुसीबतें हैं, आज सभी आत्माएं किस हालत से गुजर रही है। तो ये पूरा मुरली को अगर देखा जाए तो बाबा प्रत्यक्षता की ओर इशारा करते हैं, और आधार मुहूर्त आत्मा बन जाती है जब आत्मा, तो फिर आधार मुहूर्त आत्मा उद्धार करने के निमित्त बनती है। तो आधार मुहूर्त दुनिया का उद्धार, आधार मुहूर्त आत्माओं पर निर्भर टॉपिक है हेडलाइन माना मुरली का। तो विश्व की उद्धार कैसे होगा, विश्व का उद्धार के लिए आधार मुहूर्त आत्माओं की जरूरत पड़ती है, फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। तो फाउंडेशन जितना स्ट्रांग अथवा शक्तिशाली होता है उसी अनुसार से दुनिया आगे टिकती है। तो बाबा ने हम सबको आधार मुहूर्त बनाए है, तो आधार मुहूर्त बनाना अर्थात बाबा के हर एक कर्म में हम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टार्ट से लेकर के अंत तक, और फिर आने वाली नए सृष्टि के लिए भी हम सब निमित्त बनते हैं। और कोई भी हम सब आत्माओं को कुछ भी पता नहीं था कि आगे जाकर के हमारा इस प्रकार के रोल होगा, हम इस प्रकार के पाठ बजाएंगे, चाहे आदि रतन हो, चाहे अष्टर रतन हो, चाहे 108 हो, किसी को भी पता नहीं था होगा। हम भगवान के मददगार बनेंगे, भगवान को ढूंढने के लिए खोजने के लिए तो सभी आत्माओं ने जन्म जन्म जो कुर्बानी दी है उसके बदौलत हम भगवान के बने। ऐसे चलते चलते हम कोई भी भगवान के बने नहीं हैं, इसका पीछे का अगर बैकग्राउंड देखा जाए एक एक आत्माओं की कुर्बानी कोई कम नहीं है। तो कई ऐसी आत्माओं ने तो ऐसे भी काशी करवट में हिस्सा लिए होंगे, उसके बदौलत हम सब उसके बने। इसीलिए दुनिया में भगवान को पहचानने वाली कितने कम आत्माएं होते, और आगे जाकर के तो बाबा ने आगे जाकर के जो बोला है तो आगे अभी का समय हो सकता है, क्योंकि अब ऐसी कोई आत्माएं लास्ट से फास्ट निकलने वाली इस परिस्थिति और इस हालत में मुश्किल से ही कोई आते होंगे जो सौभाग्यशाली आत्माएं होंगे जो अंत में इनका पाठ होंगे। इसीलिए बाबा ने बोला कि तुम आधार मुहूर्त आत्मा अपने स्वरूप में जब टिक जाती हो, टिक जाते हैं, तो फिर दुनिया का कल्याण होना शुरू हो जाता है। तुम आत्मा जब आधार मुहूर्त के स्वरूप में टिक जाती हो तो संसार की आत्माओं का कल्याण हो जाता है, अर्थात जन्म जन्म से जो प्यासी आत्माएं हैं, जन्म जन्म से जो प्यासी आत्माएं, किसी को मुक्ति और किसी को जीवन मुक्ति की इच्छा है, वो आत्माओं का कल्याण हो जाता है। और तुम आत्मा परमधाम के गेट खोलने के निमित्त बन जाती हो, और जो आत्माएं स्वर्ग के वर्षे से, जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माएं हैं, उन सबको वर्षा दिलाने के भी आप निमित्त बनते हो। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हम सब, बाबा ने बोला कि हम सब बहुत बड़े जिम्मेवार आत्माएं हैं, हमारी एक एक छोटी छोटी जिम्मेवारी कईयों आत्माओं का भाग्य अजमाने के निमित्त बन जाता है, और हमारी छोटी छोटी कमजोरियां दूसरी आत्माओं के लिए पुरुषार्थहीन बनाने का कारण बन सकता है। जब तुम आत्मा बाप के बन जाते हो तो तुम बीज के साथ में, शिव बाबा सृष्टि का बीज है, उसके साथ में तुम वृक्ष बन करके, जड़े बन करके बाबा के साथ में तपस्या में होते हो। तो जब तपस्या में हम होते हैं तो पूरे सृष्टि को पानी मिल जाती है, खाद मिल जाता है, और फिर धूप भी मिल जाती है। तो वो आत्माओं सबका पोषण करने की जिम्मेवारी है, क्योंकि जड़ जब मजबूत होता है तो पूरे पेड़ हरा भरा होता है, पूरे पेड़ में हर प्रकार की सर्कुलेशन बराबर होता है, नहीं तो कोई ना कोई टाने तो सूख जाते हैं, अलग पड़ जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। इसलिए हमारी एक छोटी सी एक संकल्प किसी न किसी एक टाने को सुखाने के निमित्त तो बन सकता है। इसलिए सर्व प्रकार की स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई है। तो तुम आत्मा जब तपस्या में होते हो तो उसमें संसार में जो टेंशन का समय है अभी, तो टेंशन को भी तुम परिवर्तन कर देते हो और टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाता है और तुम अभी स्मृति स्वरूप बन जाते हो। तो फिर अभी की जो स्मृति स्वरूप है पूरे कल्प चलता है, क्योंकि स्मृति बाबा ने दिलाए हैं। द्वापर से कलयुग तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम किस लिए पहुँचे? हमारी स्मृति खो गई थी, वही स्मृति को ढूंढ रहे थे हम सब। स्मृति खो गई थी हमारी और हम बेखबर हुए थे और खोया पाया डिपार्टमेंट की तलाश में थे। तो बाबा हम सबको खोया पाया डिपार्टमेंट ढूंढ करके बना करके हम सबको ढूंढा है बाबा ने। हर गली मोहल्ले में छान मारा है बाबा ने और हर धर्म मठ पंथों में जा करके अपने बच्चे कहाँ कहाँ गायब हुए हैं वहाँ जा करके बाबा ने सुराख हाथ में लगाए कि यहाँ से कोई बच्चे निकल सकते। कहीं मंदिरों में गए होंगे, कहीं देवालय, कहीं शिवालय, कहीं मठ पंथ, इस प्रकार के स्थान पर जाकर के बाबा ने ढूंढा है। अगर रूहानी परवाने की जो किताब हम पढ़ते हैं उसमें एक्चुअल में अगर देखा जाए उन सभी आत्माओं के जीवन में किस प्रकार का टेंशन बढ़ गया है, तो उस टेंशन को पूरा करने के लिए कोई विश्व भ्रमण में निकले थे तो बाबा ने उनको उसी जगह पकड़ लिया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों के कारण से संपर्क में आए तो उसी कारण से वहाँ पर बाबा ने पकड़ा है। अगर वो डिप्रेशन में नहीं आते, टेंशन नहीं होता, तो उसी मठ पंथ में, उसी धर्म में, उसी जगह पर फंसे रहते। लेकिन बाबा को पाना था इसीलिए वो आत्माएँ किसी न किसी कारण के बस होकर के वो आत्माएँ बाहर निकली, तब तो फिर बाबा ने उसको ढूंढ लिया है। इसीलिए कभी कदा तो बाबा हम सबको भी कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशियों को कहते हैं। तो तुम बच्चे अगर मेरे को ढूंढने कितनी कोशिश की थी लेकिन पकड़ में नहीं आए और हम पकड़ ही नहीं सके मुझे। जब मैं ढूंढ लेता हूँ तभी तुम बच्चे मेरे बन जाते हो। इसलिए ढूंढने में तो हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है द्वापर से कलयुग तक। नौ प्रकार की जो भक्ति, इतना कठोर भक्ति हम सब ने किए होंगे, सर्व प्रकार की जो विधि को पूरा करने के बाद ही सिद्धि मिलती है। सिद्धि मिलना अर्थात भगवान बाप मिल जाना। अगर कहीं कुछ रहा हुआ होगा ना तो आत्मा फिर रिटर्न जानी पड़ती। इसलिए कई बार देखा है कि दो तीन ऐसे भाइयों को देखा है, उनको वो ज्ञान में आ गए हैं, 10-12 साल 15 साल चलने के बाद फिर वो भक्ति मार्ग में सन्यासी बन के चले गए। क्योंकि उधर पापड़ बेलना अभी भक्ति की बाकी थी तो इसीलिए उनको उधर पीछे बुलाया गया। ज्ञान सब कुछ समझ में आ गया उनको, फिर भी उनको भक्ति अच्छा लग रहा है, फिर सन्यासी बने हुए हैं। तो अभी बीच में एक भाई आए थे, पहले तो काफ़ी दिन 6 महीने हम इधर डाइनिंग में होते थे तो साथ में रहते थे, तो फिर उसने अभी सन्यास धारण किया है। तो कुछ कमंडल वमंडल कुछ डंडे वंडे लेके, वो तो लोखन के डंडा हाथ में लेकर के चल रहे थे। तो यहाँ तो बहुत अच्छा प्यार मिला हुआ था उनको। तो मैं इधर योग में बैठा था, बार बार वो मेरे तरफ देख रहे थे, इधर बाबा के कमरे में वो भी योग में बैठे थे। इस ऐसे देखा तो उसने पहचान लिया मुझे। उसके तो लंबे लंबे दाढ़ी मूछ होने के कारण से आपने को उतना अपने लोकेशन से बाहर दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने हम लोग तो अभी सदा एक ही जैसे ही रहते हैं, तो उनके तो जैसे अभी घर वालों को भी मास्क पहनने के कारण से ना कुत्ता भूखता है, पहले उसका है ना उसका देखने का नजरिया। कि ये क्या आ गया सर, मास्क उतारते हैं तो कुत्ता पहचान लेता है ये मेरे मालिक है बोल के। तो सब भी इस प्रकार के दाढ़ी मूछ पाले हुए थे, तो पूछा कि फिर मेरे को ऐसे पकड़ लिया देवेंद्र भाई बोल के। तो फिर बातें हुई बाहर आकर के, गप्पे छप्पे हुए, तो फिर पता लगा कि मैं तो अभी उधर पहले भी था, अभी उधर ही चला गया हूँ, फिर भी अंदर से मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा को खूब प्यार करता हूँ, ऐसे बोल रहे थे। तो इसी कारण से हमने बाबा के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़े होंगे तो हमारी रिवर्स गियर नहीं लगेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं तीव्र पुरुषार्थ के बजाय ढीले पुरुषार्थ होकर के भी पापड़ बेलने पड़ते हैं उसमें, और इतने ठोकरे मन से होता है, कष्ट की एहसास होती है, तभी तीव्र बेगी बनकर के आगे बढ़ने में हमको सपोर्ट मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी आगे जाकर के संसार परिवर्तन के लिए तुम जब आधार मुहूर्त बन जाते हो तो संसार स्वतः ही और सहज परिवर्तन हो जाता है, तो आगे जाकर के आपको इस प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे संसार के टेंशन को ख़त्म करने के लिए। हर आत्माएं टेंशन ग्रसित है, तो उन सब के टेंशन को ख़त्म करने के लिए तुम आत्मा आधार मुहूर्त और उदार मुहूर्त बने हो, तो आगे जाकर के सभी आत्माएं महसूस करेगी कि मेरे इतने लंबे समय से जो टेंशन में था, ग्रसित था, टेंशन तनाव में जी रहा था, ये मेरे टेंशन को कैसे इन्होंने कैसे खींच गया, किसने खींचा, तो उनका नज़र जाएगा, है ना, शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की तरफ नज़र जाएगी, और उसके बाद उनका नज़र बाबा की तरफ जाने लग जाएगा। तो बाबा ने बोला कि थोड़ी सी हलचल होने दो और तुम अचल बन जाओगे तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाएगी, दुनिया में हलचल शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम अचल बनते ही दुनिया में हलचल शुरू हो जाएगी, इसका मतलब हम सब अभी थोड़ा थोड़ा अचल बनते जा रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हलचल शुरू होना शुरू हो गई है चारों तरफ से, इसीलिए जितना जल्दी हम अचल हो जाएंगे विश्व परिवर्तन के नज़ारे जल्दी दिखाई देगा। तो फिर बाबा कहते हैं कि जब आधार मुहूर्त आत्मा ही हिल रही होगी तो दूसरों का उद्धार कैसे करोगे, इसमें बाबा ने उल्लाना दिया है। तो अभी तुम्हें अचल बनने की आवश्यकता है, तो अचल बनते ही ये सब बातें आगे दिखाई देगा, और तुम इतने बड़े कार्य करोगे कि जो दुख अशांति टेंशन तनाव से ग्रसित आत्माओं को अपने बल से उड़ा करके उसके दुख अशांति को विस्मृत कर दोगे, और वो चल न पाने वाली आत्माओं को हिम्मत का टांग दे करके उसको फिर अपने बल से उनको चलाओगे, चलाने की सामर्थ्य आपके पास में आएगी, तभी तो सभी आत्माएं मानेंगे और सभी आत्माएं तब स्वीकार करेंगे। तो अभी हम सबको उतना पता नहीं लगता है, जैसे बाहर वाली आत्माओं के साथ में जब हम कनेक्शन में होते हैं तो आत्माओं के जैसे कि कुछ न कुछ मन में व्यर्थ फालतू बातें चल रहे होते हैं, टेंशन तनाव के महसूस उनको हो रहा होता है, उस समय हमारे संपर्क में कुछ समय आते हैं तो वो सभी आत्माएं महसूस करती है कि कुछ हल्कापन महसूस होता है, उतना सारी जो बातें हावी होते हैं, विचार हावी होकर के व्यक्ति दुखी हो जाता है, वो आत्मा महसूस करती है कि कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है। तो इसी प्रकार के एक अनुभव हमने अनुभव किए थे कि हम सेंटर बनाने में हम वहाँ थोड़ा निमित्त बने हुए थे, तो पूरे बिल्डिंग में वायरिंग करना था, तो एक भाई ने बोला कि वायरिंग का सब जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं कर लूँगा बाबा की सेवा, अपनी तरफ से उसने हाँ बोला था। तो दिन भर तो उसको दुकान में अपना काम करना पड़ता था, टीवी रेडियो और बिजली के कार्य भी होते थे, तो रात को 8-9 बजे से हम वायरिंग करना शुरू करते थे, रात भर लग जाता कभी कभी, तो 2-4 दिन ये कार्य चला। तो भाई कहता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ अपने पास में न कोई टेंशन है, न तनाव है, न कोई प्रकार की व्यर्थ ख्यालत चल रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के महसूस कर रहा हूँ मैं भी, ये किस कारण से हुआ है वो समझ नहीं पा रहे, और हमको बाबा भी हमसे डायरेक्ट थोड़ी कराएगा, हमको पता ही नहीं होने देगा। वो भी बाबा के लिए कर रहा है तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना के अनुभव तक कराएगा ना उसको भी। तो हम भी हैरान हो गए, हमारे पास में इतने सामर्थ्य तो है नहीं कि हम उसको उसकी उसको खींच करके ऊपर पहुँचाए उसको अनुभूति कराए, लेकिन किसी को निमित्त बना करके उसने दी गई जो कुर्बानी बाबा के लिए, उसको उसी समय फल मिल रहा था, वो आत्मा अनुभव कर रही थी। तो इस तरीके से आगे जा कर के तो हम सबको ये होगा ही, और सबको इस प्रकार से बाबा हमारे अंदर जिस प्रकार की जो वाइब्रेशन हमसे निकलता है, हमारे उस वाइब्रेशन के दायरा होता है, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, और उस एरिया में आते ही उस आत्मा को इस प्रकार की फीलिंग होती है। तो बाबा ने इसमें एक एग्जाम्पल दिए हैं कि दुनिया में इस प्रकार के मशीन बने होते हैं, हर जगह जाना नहीं पड़ता है, वो पावर से उस चीज़ को सोते ही खींच लेते हैं। इसी रीति से तुम भी उस आत्माओं को इस तरीके से खींचोगे और उस आत्माओं को अनुभव कराओगे। तो जैसे अभी माउंट आबू में हमने सुबह सुबह वॉकिंग करते समय देखा था, पहले एक ट्रक लाया हुआ था और वो ट्रक रोड में चलती थी, सारे वहाँ के जो कचरा है ना खींच लेती थी, हाँ पूरे माउंट आबू साफ कर देता था। जो 150 जो मजदूर लग के झाड़ू दिन भर लगाने से नहीं होता था, वो 1 घंटा में पूरे माउंट आबू साफ करके निकल जाती थी। तो अभी भी जो मशीन हमारे यहाँ पूछी के लिए लाया गया है, पूछाई के मशीन, कितने सारे तो मैं यहाँ पर सेवा करती थी, वो मशीन वार पार 1.5 घंटे में पूरा का पूरा कर देता है। और पानी डालना यह करना कुछ करना ही नहीं पड़ता है, पानी नीचे उतारेगा भी, सफाई करेगा भी, पानी को भी खींच देता है। तो इसी तरीके से बाबा कहते हैं कि यह शक्ति हमारे अंदर होगा। तो बाबा ने बोला कि थोड़ी सी हलचल होने दो तो, और आप रूहानी चुम्बक बन करके अनेक आत्माओं को खींचने के निमित्त बन जाओगे। तो रूहानी चुम्बक की इस प्रकार की विशेषता बाबा ने बताई है। तो बाबा ने बोला कि आगे जा कर के सबका नज़र बाबा की तरफ जाएगा, थोड़ी सी हलचल होते ही वो आत्माएं जागेगी, जो कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है, जो वो जगाने से भी नहीं जागती है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब लंका में आग लगी तो विभीषण की कुटिया में नहीं लगा, तो उसमें भी कुंभकर्ण खरांटे मार के सो रहा था। तो उसके बाद में जब कुंभकर्ण जागा तो फिर कुएं खोदने चल पड़ा वो, क्योंकि आग लगी तो बुझाना तो पड़ेगा। तो आग लगने के बाद कुआं खोजने जाएंगे तो क्या बच पाएगा क्या? कुछ कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसी रीति से बाबा कहते हैं कि वो कुंभकर्ण जागेंगे और दूसरी जो संबंध संपर्क में आई हुई आत्माएं हैं, कई सारी आत्माएं तो बाबा के बच्चे बन करके मधुबन आते हैं, फिर जाने के बाद में बाबा के बच्चे नहीं रहते, बनते नहीं, और सिर्फ संपर्क बनाए रखते हैं लेकिन धारणाओं में नहीं चलते। तो ऐसे संबंध संपर्क में जो आई हुई आत्माएं हैं, अलबेलेपन के नींद में सोई हुई है, वो आत्माएं भी जागेंगे आगे जा करके। तो इस प्रकार की थोड़ी सी हलचल होते ही वो आत्माएं भागेगी बाबा की तरफ। तो कई आत्माओं को देखा है, एक भाई हमारे उधर आता था तो इतना टेंशन में था, तो चारों तरफ उसने छान मार के देखा, डॉक्टर से लेकर के अनेक प्रकार के उपाय अपनाया, कहीं भी उसको शांति नहीं मिली थी। तो उसके कारण से क्या करे कहाँ जाए इस प्रकार के मजदार में था। तो किसी ने उसको बताया कि ओम शांति में जाओगे तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी, बहुत अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा, इस प्रकार से किसी ने सुझाव दिया था। तो आत्माएं आई तो जैसे बोला तो ऐसे हुआ, कुछ ही दिन के अंदर अंदर उसके डिप्रेशन खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई। तो बाबा का अच्छा बच्चा बन करके चल रहा था, चलते चलते फिर मधुबन आने का जब टाइम हुआ तो उसको भी इच्छा हुई कि चलो हम मधुबन जाते हैं। तो दीदियों ने बोला कि ठीक है, अभी सेवा भी करता है, धारणा में अच्छा चल रहा है, लेके आए। तो आने के बाद में फिर यहाँ सब कुछ देख लिया, सब कुछ हुआ, उसके बाद में फिर जाने के बाद वही ठंडा ठाकुर हो गया। तो इस प्रकार के सैकड़ों हजारों आत्माएं तो अभी भी बाबा के बच्चे दूर से देखने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि देखने वाले तो देखते रह जाएंगे, करने वाले पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार की आत्माएं भी आगे जा करके भीड़ लगने वाली है। जो उतना जानते पहचानते नहीं उनको तो पता नहीं रहता है यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, क्या चलता है। लेकिन जो संपर्क में आई है, कोई शिविर में आए हैं, कोई कॉन्फ्रेंस डायलॉग लेक्चर्स में आए हैं, वो आत्माओं को तो सब कुछ पता होने के बाद में भी उन्होंने जिस प्रकार की साधना, जैसे भक्ति के पराकाष्ठा तक नहीं पहुंची होगी, इसीलिए वो इस प्रकार से तीर निकाल रही है। तो आगे जा कर के वो आत्माएं सबसे ज़्यादा भागेंगे। तो इसीलिए एक भाई सुना रहे थे, ज्ञान सर्वर में नाइट सिक्योरिटी करते थे, तो उनको रात को कुछ कुछ दिखाई देता था। तो वो बता रहे थे कि जो आत्माएं यहाँ से होकर के गई, सब कुछ पता था, फिर भी कुछ नहीं किया। तो आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले मधुबन के चक्कर काटती है, ज्ञान सरोवर जहाँ जहाँ वो गई है। तो वहाँ हम सब ने भी एक बार देखा था, हमारे सेंटर में जब जिस सेंटर में सेवा चल रही थी वायरिंग का, तो वहाँ पर देखा था कि हमारी दीदी राधे रात में कुछ देखा उन्होंने। तो पूरे फैमिली मारुति वैन में कहीं जा रहे थे, तो वो कार एक्सीडेंट हुआ तो परिवार के कोई भी नहीं बचे, चार पांच छह लोग एक साथ चले गए। तो रात को दीदी सुबह सुना रही थी क्लास के बाद में, वो सब आत्माएं रात को आई थी। पहले तो हम हजार बार बुलाने जाते थे, कभी नहीं आती थी। जब वो सब चले गए, बॉडीज छूट गई, तब तो आत्माएँ आकर के शांति मांग रही थी, इस प्रकार की बातें सुना रही थी। तो आगे जाकर के तो बाबा कहते हैं ये आत्माएं आएंगे तो उन सबको झेलने के लिए हमारे पास में कितनी ताकत है, क्योंकि देने की ताकत नहीं होगा तो झेलना ही पड़ेगा। देना होगा तो देने की होगी, तो हम उसका कल्याण करेंगे, उसको मुक्त कर देंगे, उसको आज़ाद कर देंगे, उसको ठप्पा लगा के दूसरे जन्म के लिए हम रवाना करेंगे। अगर नहीं होगा तो बाबा कहते हैं द्वादश आत्मा प्रवेश करेगी, उस समय क्या करोगे। ये तो बाबा ने कई बार मुरली में बताए हैं, इसलिए बाबा ने हम सबको अभी से ही हमको अलर्ट किया है कि हम इतने शक्तियों से, शांति से, खुशी से हमारा जीवन भरपूर होगा, तब तो फिर वो सबको दे सकेंगे। तो इसके बाद में बाबा 18 जनवरी के लिए इन एडवांस सबको याद प्यार दे रहे हैं। तो 18 जनवरी अर्थात सामर्थ्य दिवस है, स्मृति स्व सामर्थ्य दिवस है, जो संपन्न बनने का दिवस है, फरिश्ता संपन्न फरिश्ता बनने का दिवस है। और ये 18 जनवरी के दिन आप लोग कहाँ रहते हो, हाँ कहाँ रहते हो, है ना। बाबा ने बोला कि साकार वतन में रहते हो या तो अव्यक्त वतन में रहते हो, क्योंकि ये बाप समान बनने का दिवस है, संपन्न बनने का दिवस है, संपूर्ण बनने का दिवस है। तो ये 18 अध्याय अर्थात जो नाष्टम व स्मृति लब्धा अर्थात संपूर्ण बन करके एक कदम की दूरी रह जाए, इस प्रकार का दिवस है ये। इसलिए बाबा ने 18 जनवरी के लिए भी याद प्यार दिया, 12 तारीख की मुरली है लेकिन बाबा ने पहले याद प्यार दिया है। इसलिए जो चार सब्जेक्ट के लिए बाबा ने हम सबको बताए हैं, इसमें पहला सब्जेक्ट में जो ज्ञान की बातें हैं, बाबा कहते हैं कि पहले ज्ञान में तो आप लोग सभी आत्माओं को ढूंढने के लिए गली मोहल्ले में छान मारते थे, मेगा प्रोग्राम करते थे, प्रदर्शनी लगाते थे, प्रोजेक्टर द्वारा लोगों को सुनाते थे। तो बोलते हैं कि बाबा की कब तक उनको ढूंढते रहोगे, अब सेवा का रूपरेखा चेंज हो चुका है। तो ज्ञान का सब्जेक्ट और सेवा का सब्जेक्ट, आगे तुमको ढूंढने के लिए लोग आएंगे, हाँ तो तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे और तुम्हें खोजते हुए वो आएंगे। तो सेवा का पूरे रूपरेखा ही चेंज कर दिया बाबा ने। अब योग की बातें जो तो धारणा की बातें बाबा ने बताया कि जब तुम अचल बन जाओगे, जब हर बात की धारणा होगी तभी अचल बनेंगे, तभी तो फिर अचल बनेंगे। तो हम अचल बनते ही दुनिया में हलचल शुरू होगी। अचल बनने का आधार है धारणा स्वरूप है। फिर योग की बात तो बाबा ने बोला कि तुम आधार मूर्त इसीलिए बनते हो क्योंकि तुम नेचुरल योगी, नेचुरल सहयोगी बन जाते हो। तो ज्ञान की बातें, योग की बातें, धारणा की बातें और सेवा की बातें, क्योंकि अभी जाकर अभी का समय कहीं किसी को ज्ञान सुनाने का है नहीं। अब ज्ञान सुनते सुनते सुन हो गए हैं, अब ये प्रयोग का समय है। जो इसीलिए सुन रहे हैं, प्रयोग करें। तो उस समय, उस दिन जो रूहानी लीला में बाबा ने बताए थे, है ना, एकाग्रता की शक्ति अंतर्मुखता के द्वारा सेवा के लिए बताए, शांति की शक्ति। तो इसी रीति से बाबा हम सबको अभी रूहानी योद्धा बन करके संसार का हित करने के लिए, उद्धार करने के लिए, आधार मूर्त बन करके संसार की आत्माओं का कल्याण करने के लिए रूहानी क्रांति के अंतर्गत हम सब अपने आप को कितना सशक्त और कितना शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महसूसता की शक्ति के जरिए ही हम अपनी अवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इस बात के लिए हर दिन, है ना, चौकन्ना रहे, चौकस रहे और अपनी अवस्था को बनाए रखने में कोई कोर कसर न छोड़े। और संगठन में एक एक शब्दों की वैल्यू है, अनुभव की अथॉरिटी जिसके पास में होगा, दूसरों को भी मदद मिलेगा, दूसरी आत्माएं भी एक एक शब्दों की प्यासे हैं। इसीलिए कोई कहते हैं कि मुरली का ही बारे 24 घंटा चिंतन कर, माना अध्ययन करते रहना चाहिए बोलते। तो उसमें हम कहते हैं कि अध्ययन करने के बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट है अनुभव की अथॉरिटी। तो सभी आत्माओं को अगर इकट्ठा किया जाए, हर एक के अनुभव अपने अपने हैं, तो वो कोई न कोई अनुभव किसी न किसी के जीवन में क्लिक हो जाएगी मन में, और उसको सपोर्ट मिल जाएगा। मुरली तो कोरा है, अब उसके बाद में प्रैक्टिकल में हमने कितना उतारे हैं, उसके बाद ही ये काम में आता है। इसलिए मुरली का जो चिंतन मनन करके आप सबके साथ शेयर किया, अच्छा, ओम शांति।